जैसे किसी गांव में आग लगे और कोई बच कर पर्वत पर जा बैठे, दूसरों को तपते हुए देखकर अपने बचाव को देखकर उसको बड़ा आनंद आता है। ऐसा आनंद हमें कब आएगा? दूसरों को निकालने के लिए जब पर्वत से नीचे आते हैं और तपे हुए गांव से बाहर निकालने को लोगों को कहते हैं, लोग नहीं आते फिर भी प्रयास करने वाला प्रयास करता है, कितना उसमें धैर्य होगा? ऐसा भैर्य मुझ में कब आएगा? तो राम जी न धन से न राज्य से न फूलों की जया से इतना सुख मिलता है जितना संतों के सानिध्य से सुख मिलता है। जिस देश में आत्मज्ञान की चर्चा नहीं होती, जिस राज्य या नगर में आत्मज्ञानी संत नहीं रहते, उस नगर को महा उज्जा यहाँ भिक्षा मांग कर जीना पड़े तो एक टाइम भिक्षा मांग कर खाओ और ब्रह्म देवताओं के वचन को सुनो और संसार समुद्र से पार हो जाओ, क्योंकि मन ही तुम्हारा मित्र है और मन ही तुम्हारा शत्रु है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष है, मन ही बंधन का मुक्ति का कारण है। इसलिए मन में यदि परमात्मा का मनन होता है, मन में यदि आत्मज्ञान का मनन होता है, जगत मन में यदि जगत के मिथ्यात्व का मनन होता है तो वह मन तुम्हारा मित्र है, और मन में यदि जगत की सच्चाई का मनन हो रहा है तो वह भी मन तुम्हारा शत्रु है। जिस मन में शांति की प्यास है वो मन तुम्हारा मित्र है, लेकिन जिस मन में संसार के सुख की प्यास है वो मन तुम्हारा शत्रु है। जिस मन में परमात्मा के तत्व को जानने की प्यास है वह मन में ही तुम्हारा परम गुरु है, परम मित्र है। और जिस मन में तेल फाते करे चुनाव फाते करे इंदिरा में जग जग वो मन में आए वो मन तुम्हारा शत्रु। तुम जगत को धोखा दे सकते हो लेकिन जगदीश्वर को धोखा नहीं दे सकते हो। तुम किसी से वफादार रहो चाहे नहीं रहो लेकिन अपनी आत्मा से वफादार रहना। वो तुम्हें देखे पाने देखो लेकिन वो बोले दिल भर के तुम्हें देख ही रहा है। तो तुम्हारी बात नहीं चाहे सुने लेकिन वो अंतर नहीं तो तुम्हारी पुकार सुन ही रहा है। जो उसको अच्छा लगेगा कर देगा, तुम फिकर किस बात की करते हो? यार जब की गर्दन झुका ली मुलाकात कर ली, जान पर जान पीने से क्या फायदा? रात बीती सुबह से उतर जाएगी किसी फकीर की आंखों से वो प्रभु की प्यालियों से ले सारी जिंदगी सुधर जाएगी। दुख की रात तो पूजा जाता है और अकेला होता है तो मारा जाता है।
ऐसे तुम आत्मरूपी स्त्री में मस्त रहो, फिर तुम्हारे गले में संसार रूपी व्यवहार होगा तो पूजा जाएगा, तुम्हारे हाथ में संसार के कार्य होंगे तो पूजे जाएंगे। वाह वाह, दिल रोजा दिल की सुनाऊ सुनने वाला कौन है, फकीरी चालियां भर भर के फैलाऊ सुनने वाला कौन है। पुराने किले चाली पर चलने वाले लोग तुम्हें मुबारक थे, लेकिन हम तो छलांग मारेंगे हमारे यार में।
कीर्तन को ज्ञान से सत्संग से प्राप्त करते हो, शुभ कर्मों से प्राप्त करते हो, सेवा और सुमरण से प्राप्त करते हो, जगत के दृष्ट धर्म को हटाने की कोशिश करना मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। ऐसा वशिष्ठ जी महाराज के आज के प्रसंग से हम लोग को ज्ञात हुआ। इसके बाद सुंदर कथा होगी, तब तक एक मगन है और धीरे धीरे विकसित करो। उसको रोज देवता बिताऊ नहीं कर सकती, यथारत लक्ष्मी को ईश्वर दूर नहीं कर सकता, यथारत लक्ष्मी किसी का बुरा नहीं कर सकता, यथारत लक्ष्मी किसी का बुरा नहीं कर सकता, साधु के हृदय में कारण है। हमारा पुत्र गए था लेकिन पुत्री आ गई, मैं तीन प्रकार का प्रारंभ होता हूँ, मंद तीव्र करते हो, मंद प्रारंभ होता है तो थोड़ा बहुत भगवान की प्रार्थना करने से नहीं, तीव्र होता है तो अपील बात कर भगवान देवी संप्रता दुर्गा के काम हो, पर तीव्र होता है तो अवश्य भी होता है जिसका लेना दो हजार विश्वास करो अगर बचे करो, लेकिन वो घटना घटते ही रहती है, जैसे भीषण के कामों से बाबा की सेवा तक होना पड़ा, राम के अनुवास जाना पड़ा, कृष्ण के महाराज के जल में रहना पड़ा, भगवान कृष्ण के नाम और कृष्ण के परिवार से युद्ध के मैदान हजार रुपये से संतों का अपमान किया और फिर आपस में घर से मर गए, कृष्ण के संतान किए और दीपक भगवान जिसको बोलते हैं और दीपक को क्रॉस से करना पड़ा, उत्तराध को व्यवहार करना पड़ा, ये सब अवश्य भावी है। मंद तीव्र तो हट जाता है लेकिन पर तीव्र तो कोई रोक के भोगे श्रद्धा रख के भोगे, कोई श्रद्धा करके भोगे, श्रद्धा रख के भोगेगा तो शांति रहेगा, श्रद्धा करके भोगेगा तो और नास्तिक हो जाएगा, नास्तिक का बीमा हुआ जैसे विधवा स्त्री का श्रृंगार, मेरे के बिना श्रद्धा के बिना तुम्हारा खाया पिया भोजन कल व्यर्थ है, तुम्हारा आयुष्य व्यर्थ है, भगवान कुछ भी करे तुम श्रद्धा मत हो अला उठा में खुश है। गूगल गूगल नहीं है, लाइन लगाते हैं लगाया चढ़ाते हैं मनोज्ञा मानते हैं लेकिन ये सब भिखारी है, ऐसा कह रहे हैं जीवन में कुछ इतने का संगीत उनके जीवन में नहीं खुलता, लेकिन जो इच्छा रत्ना और अहंकार के झोली उतार के जाता है वो मंदिर में जाता है तो परमात्मा मुस्कुराता है, परमात्मा बोध स्वरूप है जिसके पास समझ है उससे परमात्मा दूर नहीं है, विचारवान कभी दुखी नहीं होता, विचारवान कभी अशांत नहीं होता, विचारवान समझता कि शांति है, शांति दुख सुख है, सब
मन और मन की मान्यता नहीं है। परमात्मा वेद स्वरूप है, वेद हो जाता है तो अप्राप्ति की प्राप्ति महसूस होती है। तुम ईश्वर को देखता नहीं जो कर लेते हैं, ईश्वर के तुम को देख ही रहा है, ये भी समझाने के वचन है तुमको। ईश्वर देख रहा है जब तुम अपने को हर मास का शरीर मानते हो, वरना तुम ही शरीर को देख रहे हो, तुम ही सबको देख रहे हो, मन को भी तुम देख रहे हो, बुद्धि को भी तुम देख रहे हो, शरीर को भी तुम देख रहे हो। ऐसा तुम्हें जब पता चल रहा था तो खूब सौभाग्य जो होगा कहने को तो शब्दों की उत्तर कमी नहीं है, समझने को है। जहाँ सब समय समर्पित शांत हो जाती है वहाँ पर आत्मज्ञान शुरू होता है। आत्मज्ञान कुछ न करने को कह रहा है, मगर कुछ करते हैं, कुछ मांगते हैं। ये ऐसा नहीं मांगते कि हमारी वासना खत्म हो जाए, हमारे मांगने की इच्छा खत्म हो जाए। हम जिससे जिस मंदिर मस्जिद से मांगते हैं उसमें भी वो परमात्मा की चेतना है जो हमारे हृदय में बैठा है। इसलिए और मंदिरों में मस्जिदों में गुरुद्वारे में लाइन में भी लगाए गए, तुम जहाँ खड़े हो जाओगे जिनके मंदिर की प्रार्थना तुम कर सकते हो, जिनके मंदिर में तुम बिना लाइन के भी जा सकते हो, जिनके मंदिर में तुम इस तरह से जाने की तरफ भी सीख ले तो तुम्हें कोई गुजारे बाहर भी नहीं निकाल सकता। क्योंकि पत्थरों के मंदिर में तो जाओगे तो गुजारे बाहर भी निकाल देगा, जिनके मंदिर में अभी प्रवेश हो रहे हैं तो कोई पुजारी बाहर नहीं निकाल सकता। जिनके मंदिर में वो मिट्टी के मंदिर बनाए, जिनके मंदिर में जगत नेता का वास है, दसा सुना है, उसने दिल के मंदिर में ही नहीं बाहर भीतर एक ज्ञान हो गुरु ज्ञान बताएंगे। बाहर है भीतर हो कई है, जड़ चेतन एक ही है, सत असत एक ही है, महान धातु बदमाश को लिखूंगा और साधु दोनों की आकृतियां और बुद्धियां और मन अलग है, बाकी दोनों एक ही चेतन का रूपांतर है, वर्ग है। ऐसा जब दिल के मंदिर में ज्ञान हो जाएगा तो तुम्हारा मन माला हो जाएगा, तुम शिवालय हो जाएगा। कुछ बोलते मन मन का उसकी माला है, तन उसका एक शिवाला है। कुछ कृपा मंगल गंगा है, मैंने में बैठी गंगा है, यात्रा के इच्छाओं के कल्पनाओं के कपड़े उसने फेंक दिए। ये मंगल गंगा है, मन बड़ंग है, मेरे आत्मिक होकर अपनी महीनों में विराज मंगा है। कुछ कृपा मंगल गंगा है, मैनों में बैठी गंगा है, ज्ञान की गंगा उसकी आंखों में बहती है। जो परिस्थिति आती है, जो अवस्था आती है चित्त की जगत की, उसके साथ कब स्वप्न के लिए समझता है। मैंने में बहती गंगा है, जो राजा है उसे गंगा है, दिल रंग भरा मन गंगा है, भीतर के देह से दिल इतना स्वच्छ हो गया है, साध हो गया, आजाद हो गया, मन भी तो बन गया है। मन को सुख लेने के पदार्थों की चिंता न करने पर भी अतिथि पदार्थ देखे विचार वन का पीछा पकड़ते हैं, जिसने बोल के मंदिर में प्रवेश कर लिया। वो बाहर के मंदिरों में भगवान को मनाने की कोशिश नहीं करता, लेकिन बाहर के लोग और बाहर के मंदिरों में जो भगवान है, वे भगवान तभी भगवान होते हैं जब दिल के भगवान आए हुए व्यक्ति मंदिरों में प्रवेश करता है। जिसके दिल में भगवान प्रकट हो गया वो आदमी जहाँ भी खड़ा हो जाता है वो जगह मंदिर हो जाती है। जिस मूर्ति को प्यार से निहार लेता है वो मूर्ति देव बन जाती है। इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा करी जाती थी कि मूर्ति में भगवत बुद्धि करने वाले लोगों को पुण्य मिले और श्रेष्ठ पुरुषों को प्राण प्रतिष्ठा करवाई जाती थी। मुझे वास्तव की भूमिया छोड़कर शुद्ध हृदय मैं चैतन्य परमात्मा को अपना आत्मा समझता है अथवा अपने हृदय में परमात्मा को प्रार्थना करता है। वो मंदिर में जाने वाले भक्तों से अपेक्षा और कोई करता है उनका है।
स्वरूप स्थिति का स्थान होता है, स्वरूप बोध का स्थान नहीं होता।
अहम बहुत बार ज्ञान हो जाए कभी कभी किसी से परमात्मा में बैठता है कभी से जगत में आ जाएगा। स्वरूप स्थिति का तो उत्थान होता है, स्थिति चित्त की होती है। तो चित्त कभी जीत में कभी ज्ञान में कभी शांति में कभी समाधि में कभी सूर्य कभी विनोदी भगवान के स्वरूप स्थिति का उत्थान होता है लेकिन स्वरूप के बोध का उत्थान नहीं होता। स्थिति में और बोध में फर्क है, बात जरा ऊंची है वो कथा। स्थिति में और बोध में क्या फर्क है? स्थिति होती है मन बुद्धि का और बोध होता है अंतःकरण से पृथक तक का जो है अंतःकरण को जो देखता है अंतःकरण का जो अधिष्ठान है। बोध तो ऐसा होता है आत्मा का और स्थिति होती है मन। मन तो कभी समोहित होता है कभी परमात्मा के चिंतन में होता है कभी जगत के चिंतन में होता है कभी जगत को मिथ्या मानता है राजा का मन को कभी सत्ता मानता है। ज्ञान का मन अमन भाव को प्राप्त होता है। वेद से उत्थान तो होता है स्थिति से उत्थान होता है वेद से उत्थान नहीं होता है। ये बात सूक्ष्म वेताओं के लिए है, उसको तो समझने के लिए बड़े बड़े ऋषि मनुष्य आ रहे हैं बैठ के शुद्ध जी से प्रार्थना करते हैं। स्वरूप में से उत्थान होता है लेकिन आत्मा में से उत्थान नहीं होता है। चित्त में से उत्थान होता है, चित्त में उत्थान पतन होता है। मित्र शत्रु मन में रहते हैं, अनुकूल प्रतिकूल भाव मन में रहते हैं, अच्छाई और बुराई मन में रहती है। एक मन बुद्धि में रहता है, बुद्धि परमात्मा की सत्ता से चली है। जिसके सत्ता का दृढ़ ज्ञान हो जाए उसकी बुद्धि और मन चाहे अलग अलग संकल्प और निर्णय करते रहे फिर भी ज्ञान मन के बोध में से उत्थान नहीं होता।
अहम वृत्ति के पीछे अहम स्थिति बोध है, अप्रिय होने पर आत्मानुभूति ही शेष रहती है।
अहम स्थिति मैं जो कर रहा है इस मैं करने के क्या बोलते
अहम वृत्ति के पीछे अहम स्थिति बोध है, अप्रिय होने पर आत्मानुभूति ही शेष रहती है।
अहम स्थिति का दुख है अहम वृत्ति के पीछे जो अहम मात्र है मैं तेरे के पास शरीर और सब मिश्रित करना है। मिश्रण कहता है बाकी जो शुद्ध मैं है वो बोध है। एक संकल्प था और दूसरा उत्साह है उसके बीच की अवस्था जो है वो ब्रह्म है। ये समझी अवस्था है वो करने की है। ध्यान लग गया आनंद आ गया आनंद के पहले आनंद आ रहा है संजय संकल्प वो जो आनंद आ रहा है जमीन में आत्मा में हम जान नहीं पा रहा है आत्मा का आनंद है। जमीन में से उसके और कोई ख्याल नहीं आता और कहीं जो मधुरता का स्वाद आता है आत्मा इसको बढ़ाता जाए होगा ज्ञान। एक संकल्प था तो दूसरा उसमें जो जीत की व्यवस्था भी देखे जप को बढ़ा है जप बढ़ती जाएगी तो व्यवस्था कठिन सरल ज्ञान है लेकिन सूक्ष्म वृत्ति है। इसलिए ध्यान समाधि एकांत जप वृत्ति को सूक्ष्म बनने के लिए ईश्वर तो खाने के लिए नहीं है वृत्ति सूक्ष्म बनती है। ईश्वर तो है जैसे शरीर में चमड़ा को सब जगह है यहाँ लड्डू मिठाई रसगुल्ला रख दो तो मिठास नहीं होगी ये चमड़ा तो है। हाथ में पानी रख दो और रसगुल्ला रख दो मैंने भी तो पानी रखा और तो यहाँ होती है हाथ पर लाल रख दो और रसगुल्ला रख दो ये भी मीठा नहीं लगे जीव में लाल नहीं है खाली रसगुल्ला रख दो लाल अपने आप पेट हो जाएंगे मीठा नहीं तो शरीर तो सारा शरीर है मुझे अनुभव तो रसगुल्ले का वेद नहीं होता मिठास तो जीवन चाहते हैं ऐसे परमात्मा तो सब जगह है लेकिन अनुभव शुद्ध वृत्ति से ही आता है प्रज्ञा चाहते हैं उसी में साधारण भजन कर्म किया बताई अहंकार को छोड़ना शंका को छोड़ना मूल्य बार बार उसी में चलाते मेरे को तुम्हारा दुश्मन नहीं है तुम्हारे अज्ञान को देख रहे हैं और तुम अज्ञान को नहीं मानते हैं सभी भी अज्ञान जनित है उनका अपने भी अज्ञान जनित है सब तो कार्य है जो तुम अपलक में हो उसका तो गुरु दुश्मन कैसे होगा उसका तो गुरु सदा बखान करता है ब्रह्म का लेकिन तुम जब अपने को देवधारी मान लेते हो कोई बैठने वाले मान लेते हो कोई धारणा में बन जाते हो आगे धारणा चढ़वाने के लिए अपने एक देश का शस्त्र उठाता तो फिर तुम्हारा मन तुम्हारे को विपरीत दशा में ले जाता
है। ब्रह्माकार वृत्ति भी उपासना की सुदृढ़ अवस्था है यह भी लोभ नहीं है। जब प्रकृति का अभाव होता है तब केवल चेतना का अनुभव होता है। मन को मन होने पर चित्त के सीम बढ़ने पर बुद्धि के स्थिर होने पर जो है ही वही सत्य नित्य अनुभूति के रूप में श्रेष्ठ रहता है।
मन के शांत होने से बुद्धि के स्थिर होने से वृत्तियां शांत होने से जो है वही बोध के समय में सुख होता है। बहुमुख आदमी के लिए जरा ऐसी बात है कठिन है लेकिन सुनने मात्र के लिए बहुत सुंदर अभी सुनूंगा अगर किसी ने किसी जन्म में लिए बात समझ में आ जाएगा किसी भी जगह से सुंदर वह ज्ञान व्यक्त नहीं जाता है। नामदेव को रामदेव को माता के गर्व में गुरु का अगले जन्म का ज्ञान सुना हुआ याद आ गया नहीं जानू अस्तावकर को आश्रय लेने का था माँ को आश्रय लेना था प्रज्ञ को वो बात उद्देश्य रहा था कहते हैं वेद का उपदेश तो देते हैं वेद की बातें तो बताते हैं लेकिन वेद को जो भी जानता है वेद अवेद को जो जानता है ब्रह्म को जानो ऐसा करते हुए कैसे बताऊ माता को गर्भ में बैठे वो उसी को देखा लगा कि अभी तो आंख में लेता है अभी मेरा ये रोग पड़ता है अभी मेरे आंख में पड़ता है तेरे में आंख आंख रहेंगे और उसको अच्छा कर रहे मतलब उसका ज्ञान तो नहीं गया फिर उसके पिता जेल में पड़क अपराध में जो हार जाता था उसके नजर पेर कर देते थे उसके पिता नजर पेर कर गए और बताया 12 वर्ष का था हटका होकर उसको जाकर बताया कि मेरे बड़े भगवान ने उनको नजर पेर कर दिया है तुम्हारा बाप को भी नजर पेर कर दिया है जिन्हें को आत्मा शांति नहीं मिल रहा है आत्मज्ञान पाता है ये गया है दरवाजे पर जाके बोला उनको सदा में जाने ले तो सदा में जाने के लिए तो कम से कम पुत्रा का लड़का तो उम्र 12 साल के अब अलग नहीं बोले जाके जमे तो मिले हमारे राजा को वर्ष तो शरीर के होते हैं आत्मा के नहीं होते हमारे ज्ञान को देखोगे तो हमारे शरीर की उम्र को देखोगे राजाओं के मूर्ख हो जैसे कह दो को कह दिया ये बच्चा ऐसा ऐसा बोलता है अचानक इतना बोलने की हिम्मत है तो जरा देखी कौन है मगर सुकुमार तुम 12 वर्ष के हो, तुम्हारे में इतना बड़ा ज्ञान आत्मा का ज्ञान है, ऐसा हम कैसे जाने। ज्ञान के लिए तो उम्र नहीं होती, लेकिन तुम ज्ञानी हो तो नहीं ये मैं कैसे जाने। ऐसे अंदर प्रवेश हो जाएगा तो आज के नियम टूट जाते हैं। ऐसा कौन सा जीव है जो नींद के पुनः आंखें बंद नहीं करता, और ऐसा कौन है जो बंद आंखों होने पर भी देखता रहता है। ऐसा कौन है कि जिसको पाने के लिए बड़े बड़े लोग जतन करते हैं और ये पाया नहीं जाता है और खोया भी नहीं जाता है। बोले बड़े बड़े लोग यतन करते हैं परमात्मा को आत्मा को पाने के लिए, आत्मा पाया नहीं जाता इसलिए खोया भी नहीं जाता, लेकिन अनात्मा को हटाने के लिए यतन किए जाते हैं। ठीक, कौन सा जीव नींद में आते मन नहीं करता। बोले मछली नींद में आते हम नहीं करते, मछली नहीं करती। कौन सा ऐसा वेतन है, ऐसा कौन सा चेतनी है जो सब कुछ करते हुए नींद करते हुए आंखें बंद करते हुए जागता है। बोले आंखें बंद करते हुए वो चेतन दस्त आत्मा जागता है, मछली के सत्ता से काम चल रहा है। लेकिन ऐसा कौन सा दिन है जो सब दिनों में बड़ा है। बोले वो सब दिनों में बड़ा वही दिन है जिस दिन इस रस्ता को अपना आत्मा करके समझे गए वही दिन बड़ा है। ऐसा कौन सा पुरुष वस्त है जिसके दर्शन के साथ ना होते हैं। बोले जिसने अपने आप को जान लिया वो सब में श्रेष्ठ है। बोले महाराज हम कौन है। बोले मनुष्य जन्म मिला है और फिर भी देव को मैं मानता है, विषय में जिसकी प्रीति है वो महाराज हम है। जैसे महाराज रावण को भी महाराज हम कहते हैं और विश्वामित्र को मेरे श्रेष्ठ कहते हैं। अच्छा तो ऐसा कौन सा चिलंगी है कि जिसको अनंत अनंत सृष्टियों पैदा करने की सत्ता है और देखो तो बारिश से भी बारिश है और महान से भी महान है। सूक्ष्मता तो ऐसी के राय का दाने का हजारों भाग उसमें भी है और स्थूलता तो ऐसी कि सुमेर पर्वत भी उसके आगे चित भाते। ऐसा कौन सा चिलंग है। बोले वो चिलंग आत्मा है जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, रायता दाना तो क्या स्थलों का हजारवा भाग उसमें भी वो सूक्ष्म है और सुनहरे पर्वत के आगे कुछ भाग में इतना ही बड़ा है। छोटे में छोटा और बड़े में बड़ा महत्व नहीं है, छोटा से छोटा और बड़े से बड़ा वही आत्मा चेतना है इसीलिए वो सब में है। जैसे आकाश देखो ना चढ़ाई के दाने में भी आकाश है इतना छोटा है और आकाश की लड़ाई देखे तो हिमालय हिमालय के उसके कोने में पड़े। आकाश के भी अत्यंत सूक्ष्म जो है वो चिलंग है। तो जनक ने इस प्रकार के प्रश्न दिए थे, रास्ता ने उत्तर दिए, जनक खुश हो गए अलग कर दिया। हमने अंदर गए और प्रसाद चला के लोग हाथ पड़े, हाथ में पेट बाहर पीछे में हाथ में पहले हिमालय जैसी बढ़ते गए उनके मन पर जाकर बैठा उसको लेकर लेता है। कहा कि जनक कोई चलाने के कमार भरे हुए हैं, मैंने तो सुना था कि मेरा जानने की सभा लगा कर बैठा है। वो पंडितों को देखा आया कि कमार कैसे कहता कल का चेक रहा। बोले मेरे कमरे से देखे जहाँ पेड़ा हो सकता लेकिन उसमें बड़ा आकाश से टोला नहीं होता बुराई और भरा में फर्क हो सकता है, लेकिन और पटेली में फर्क हो सकता है, मशक में और प्रेम में फर्क हो सकता है, लेकिन उनके भीतर जो आकाश है उसमें तो फर्क नहीं है। उसके मेरे शरीर में फर्क है, अंदर में फर्क है, लेकिन मुझे का भी फर्क नहीं है। मेरे को तो जानने में और मेरे कमरे से आपको मेरी मजाक किया भगवान कर्म नहीं हो जाएगी। ऐसा वचन के साक्षात करके उन लोग का उल्लेख किए, ऐसा विद्वानों को छुड़ा दिया, सब पिता को लगा दें पुत्र होता है अपना माँ को बोलने को छुड़ाता है। बोले मैं कोई पुत्र है मैं कोई पिता हूँ, मेरी तुम्हारे मन की कल्पना है। बोले तुम मैं छुड़ रहा है, बोले कोई मन भागी नहीं कोई पिता दोनों यही आकाश के अंदर से आया, आकाश पर ब्रह्म के अंदर है, पर ब्रह्म को छोड़ के कोई मैं बन रहा मैं पिता। बोले बेटा तू ठीक कहता, बोले मैं ठीक हूँ मैं बैठी कोई भी कल्पना। मेरे हाथ में मृत्यु होकर तुम्हारा गया, तेरा नाम होगा, मेरा नाम है देवता, मेरा कोई नाम नहीं होता, और नाम कहने वाले सुनने वाला सब देहदारी होते हैं, देहदारी है पानी में बुद्ध दे देते थे, बुद्ध देव का नाम हो क्या न हो उसमें मेरे सागर को क्या फर्क पड़ता है, बोले तेरी हो तो एक बात बेड़ा पार कर देती है, बोले मैं बेड़ा है न पार है, ये केवल हम का भाव है। बोले तेरे जैसा पुत्र पाकर मैंने तो एक स्कूल पार दिए, आप जैसा पुत्र है मेरे जैसा पुत्र पाकर आपने एक स्कूल पार दिए, एक स्कूल का 21,000 कुल भी माया में है और माया है रश्मि में था, माया है स्वप्न, स्वप्न में एक स्कूल पार हो गए क्या हम कई पार जान जाए तो पता चलेगा मैं कुल है, मैं तुम हो, मैं हूँ, मैं ये है, मैं एक ब्रह्म जो का तुम है, ऐसा कहने वाला भी नहीं है। ज्ञान की तो विलक्षण तो जनक की अवस्था होकर कृपा करा ज्ञान होगा जनक का, लेकिन कैसे हुआ हम विचारों से हुआ है ये अष्टावक्र ने जो उपदेश दिया जनक को उस देश का नाम पड़ गया अष्टावक्र गीता, और जिनको जो प्रश्न ने उपदेश दिया तो वो हो गया प्रश्न की गीता उपदेश अकेला, ऐसे 48 गीताएं हैं, कृष्ण गीता, भगवद गीता, राम गीता और गीताएं, ऐसे राम भी बहुत सारे हैं, और गीता अपने अपनी जगह पर ठीक है, गीताएं अष्टावक्र गीता, कृष्ण की गीता, राम गीता और गीता, सत्यज्ञान की दृष्टि से देखा जाए कि अष्टावक्र गीता से बढ़कर और कोई गीता नहीं, और प्रसिद्धि में कृष्ण की गीता से बढ़कर कोई गीता नहीं, कृष्ण की गीता में सब मसाला है इसलिए सब लोग हमें प्रसिद्ध है, और अष्टावक्र गीता में एकदम अर्थ है जिज्ञासु के लिए, साधक के लिए, धर्म को छोड़ दे, अर्थ को छोड़ दे, कामना को छोड़ दे, क्योंकि धर्म का फल जो है सुख करवा दे, वो भी नास्यान है, तो नास्यान के लिए क्या मेहनत करना है, कामना प्रत्यु करकर तुम अंत में मर जाएगा, छोड़ दे काम, अर्थ को भी छोड़ दे, अर्थ से जो कुछ मिलेगा वो अंत में अमर हो जाएगा, इसीलिए अष्टावक्र ने तो धर्म को चार पुरुषार्थ में से तीन पुरुषार्थ को मिला दिया, ऐसा में तो कोई कोई विद्वान समझ पाएगा, तो भोला बाबा ने बड़ी कृपा किया है जन साधारण पर, अष्टावक्र गीता का अनुवाद कर दिया है छंदों में, छंदावली बना दिया, तो अष्टावक्र गीता का अनुवाद भोला बाबा की छंदावली का पहला भाग जो है उसमें अष्टावक्र का संवाद है, तो अपने आश्रम में यह निर्णय किया अष्टावक्र गीता संस्कृत में सब लोग नहीं समझ पाएंगे, इसलिए इसको छंदावली में जो भोला बाबा ने किया उसको अपने ब्रह्म रामायण के रूप में बदलो, वो अष्टावक्र जिनमें सब उपदेश है उसको भोला बाबा ने छंदों में जो गाया वही छंदे जो अपने आसाराम गाते हैं आसाराम गाते हैं ऐसे अभी थोड़े दिन के बाद अपने गाएंगे, अभी एक प्रेस में खतरा है, सुन रहा हूँ अष्टावक्र जन्मक संवाद प्रेस में खतरा है छंदों में, तो विचारवान व्यक्ति के लिए कुछ दुर्लभ नहीं है, सकल पदार्थ की जगमाए कर्म हूं मेरे पार अपनाई, ब्रह्म को पाना है आनंद मिलता, भगवान को पाना है तो भी इसी जगत में मौका है, स्वर्ग को पाना है तो मौका है, यश चाहिए तो ब्रह्मचर्य रखो, और अपने अधिकार में आया हुआ है समय के गुरु के सूर्य देखो आनंद दे, नहीं अपने अधिकार में अपने परिश्रम की जो चीज है उसका दान करो और ब्रह्मचर्य रखो तो तुम्हारी कीर्ति फल जाएगी, या तो तुम ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो कीर्ति ऐसा नहीं देखते, जरूरी नहीं कि ज्ञानी की कीर्ति फैले, ज्ञानी से भी ज्यादा अज्ञानी की कीर्ति फैल सकती है, बात वाला तो चार आदमी भी नहीं जानते, मेरे इंदिरा तो सब लोग जानते हैं, मोरारजी तो सब लोग जानते हैं, ज्ञान अज्ञान ज्ञान तो कीर्ति का है जो तक नहीं है, कीर्ति तो तुम्हारे और व्यवहार का फल है, समाज की सेवा करोगे परोपकार करोगे लोग संपर्क में रहोगे लोगों का कल्याण करोगे लौकिक तो कीर्ति हो जाएगी, यदि धन चाहिए तो ऐसा करे, यदि तंदुरुस्ती चाहिए तो ऐसा करे, यदि आवा चाहिए तो ऐसा करे, यदि स्वर्ग चाहिए तो ऐसा करे, लेकिन ये सब करने के लिए मनुष्य जन्म है श्री राम, और मनुष्य जन्म फिर भारत में मिल गया है, तो छोटा छोटा करने वाले छोटा छोटा करेंगे,
जो करोड़ रुपया नहीं कमा सकता वो महाराज राजद्रोह के 10 रुपये कमा ले तो ठीक है, 10 के नहीं कमाए तो 5 भी ठीक है उसके लिए। ऐसे जो ब्रह्मज्ञान नहीं पा सकता है उसके लिए स्वर्ग भी ठीक है, स्वर्ग पाने की ताकत नहीं है तो यहाँ तो मजे से जिए। इसलिए प्रश्न में सब कुछ मसाला मिला मिला के सब मुख्य दिया तो प्रश्न का व्यापक ज्ञान था, सबको साथ में लिए जा रहे हैं। रस्ता वक्त ने खास विद्या की है और उसको तत्व ज्ञान के सिवा और कोई चीज नहीं चाहिए, और जो तत्व ज्ञान नहीं करा था उनको कैद कर रहे हैं उस मौके पर रस्तावक्र बोले हैं। इसलिए धार धर तत्व ज्ञान के सिवा कोई बात नहीं, कहीं दिखती नहीं उनकी बात। लेकिन होना चाहिए दृढ़ संकल्प बल, ये कथा सुना दे रहा संकल्प बल की सत्ता बांटने की तैयारी करो।
प्रेम अने आनंद साथे संकल्प की जरूरत है, संकल्प विना जीवन जीवन नहीं, दृढ़ संकल्प नर ने नारायण बनावे थे। संकल्प ए प्राण से ये न हो तो मानव शरीर पर प्राण विना सब शुद्ध संकल्प भगवान ने मोड़ी आपे थे, एटले नहीं स्वयं भगवान जो बनावे थे।
हाँ, है तो जरा सा संकल्प लेकिन उसी पर इकट्ठा करें तो भगवान से मुलाकात करा देता है। संकल्प के बिना के जीवन व्यर्थ है, कोई न कोई ऐसा संकल्प बनाओ कि ऐसा करते ही रहूंगा, ऐसा पाते ही रहूंगा, भले एक बार नहीं दो बार नहीं 10 बार आप असफल हो जाओ फिर भी करो। अगले प्यार को बताया था कि बुद्ध निराश होकर घर लौट रहे थे, देखा कि आज आड़ तो चल रहा है 10 बार गिरा, 11वीं बार पहुंच गया। बुद्ध ने कहा ये कोई दृश्य नहीं है, ये संकेत है। बुद्ध फिर लग गए, बुद्ध को पा लिया और अभी भगवान बुद्ध होते चले जा रहे हैं। मैं तो कहा है राजकुमार रानी के बिस्तर पर जो कुछ सब लोग का कैसा किया होगा तभी तो बता है। फिर संकल्प जो लिया तो भगवान बुद्ध को तो गुजार है, तुम भी दृढ़ संकल्प करो भी प्रसाद खाते भी जाएंगे, मैं तो प्रसाद खाए बिना वह नहीं जाओगे। आप संकल्प करोगे तो जो नई चीज जो है तुम है रहा, हमने भी संकल्प किया कि आपको घुमा फिरा के हंसा के उधर से उधर से आपके कानों में ठोस ठोस के ब्रह्म विद्या डाल दे ताकि तुम कहीं काम कर रहा है। चलो
एक आंटे फकीर एक गांव में भीख मांग रहे थे, भीख मांगता मांगता तो एक मस्जिद में बाहर पहुंच गए, मस्जिद में बाहर हाथ लंबाओ आज भी करी तो हूँ भूखे थे मैंने कहीं कापो पसार थता लोग कहीं गांडा आप घर नहीं जहाँ भूख मारी सके, आ तो मस्जिद थे आ तो मंदिर थे तू क्या भूख मांगी रहे थे हम कसू नहीं मरे आगर जा। फकीर हसवा मांडे अने कहू जो भगवान ना घेर थी कसू नहीं मरे तो पी क्या घेर मैं
कथा अभी ये कथा चलेगी चले चले कथा था
आ तो आखिरी घर आई देखती हूँ आखिरी मकान सामने आ गयो हूँ अं थी कई रीते खसू अने खसी क्या जाऊ कारण के अं थी आग कोई घर नहीं हवे हूँ खोदी गई अने अं थी लईने ज खसी। लोग हसवा लाग्या तेरे तेमने कही ए सवाल नहीं परंतु भगवान ना घेर थी खाली हाथे पाचा फरी पड़ते तो पति हाथ क्या भराई सकते, पति तो हाथ क्या भराई सकते नहीं हवे आ बाने आदि पहुंचे छो तो हाथ भरीने पास करी के क्या खोदी गयो अने एक वर्ष सुधी तेना हाथ तेमज लंबायेला रहा। गाम में लोग गांडो कहवा लग्या अने कहता तू अनुसूल दी छे क्या हाथ फैलाई बैठो छो हूँ कशू मलवानु नहीं परंतु ते फकीर एक पात्र हतो तो देखी ज रहो अने एक वर्ष सुत्या पछी गाम में लोग जोयुं फकीर ने कदाच कशु मिली गयु एना चेहरा रौनक बदलाई रही है, एनी आजूबाजू की शांति हवा फैलावा लगी, एनी आजूबाजू प्रकाश पैसाई गये सुगंध रहवा लगी, ए मणस नाचवा लगे, एनी आंख में आनंद आंसू आ गया। ए मुर्दा जीव हो एक वर्ष में एनु प्राण फरी खुले उठा ए नाचवा लगे। लोग पूछू तुम शू मिली गयु मैंने कहू मैं तो इतनी तो मिली गयु मैं तो शरीर माटे रोटलो उठी होते अने मने आत्मा ने माटे पण रोटलो मळी गयो। लोग पूछवा मांड्या कि तमे केवी रीते मळी गयुं केवी रीते प्राप्त करी, तेणे कहू ये हमारा प्रयत्न साथ समग्र संकल्प जोड़ दे जो तरस है
अब जो भी करते हैं उसके साथ पूरा संकल्प जोड़ दे रखना बैठते ही रहेंगे असंभव संभव हो जाएगा ये पोतला चलाना पेड़ चलाना रोकना वगैरह रखना सब जो भी हम करते इसमें अपना अपनी क्रिया के साथ पूरा संकल्प जोड़ देते थे इसे ज्ञान के लिए भी पूरा संकल्प जोड़ देते होंगे अभी ज्ञान
जो तरस हो तो एनी संकल्प जुए मारो समग्र संकल्प खाते हो मारी तरस छुपाई गई हूँ ए जगह पहुंच गयो जहाँ एवं पानी मर जाए कि जेने पीड़ा की कोई तरस बाकी रहती नहीं प्रबल संकल्प चेतन पृथ्वी पर असर करे थे जेम जड़ वस्तु पर असर करे थे संकल्प ने कारण प्रकृति अनुकूल बने थे कहीं वारंवार जोवामां आवे छे अमेरिका में घना वर्ष पहला चार्ल्स कार्लटन नामे एक नाटक नो एक मशहूर अभिनेता थी गयो जन्म कैनेडा में थयो हतो पण जिंदगी अमेरिका में गाळी लोको तेनी पासे गांडा हता ते जमाना में नाटक मंडली एक जगह थी बीजी जगह बगी में अने गाड़ा में जाए हजी यंत्रों नो युग पाछळ आवतो हतो सौने चार्ल्स कार्लटन कहते कि तमने मारी पर प्रेम छे तो मारा मरण बाद मारा सबने मारा वतन में डाटवा प्रयत्न करशो लोगों ने घनीवार इन बातों पर हसवू आत घना वर्षों पी 55 वर्षे कालगन टेक्सास में मरी गयो लोगों तेनी इच्छा जाणता हता पण बाचा 2000 माइल दूर तेना वतन में तेने सबनी केवी रीते लई गई आखरे तेमणे तेनु सब सारा लाकड़ा मांथी बनावेल कोफिन में एटले के एक पेटी में पेक करीने ऊपर चांदनी पत्री मढीने तेने टेक्सास में दफनाव्यो तेनी इच्छा कोई पूरी करी सकू नहीं एकाद बे मास पछी टेक्सास में धोधमार वरसाद अने दरियाई तोफान चढ़ी आव्यु टेक्सास में ते बंदरो धोवाई गया तेमा पेलू कब्रस्तान पण गारब थई गयुं अने बतायेला घणा कोफिन तरवा लाग्या तेमा चार्ल्स कार्लटन नुं कोफिन पण पणाव्युं 8 महीना पछी ते कोफिन केनेडाना ते प्रिंस एडवर्ड टापू पर जई पहुंच्युं
हे संकल्प है तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे सब को कहाँ रखना है लोग नहीं रख सकते तो भी सब तुम्हारे परिस्थितियां ऐसी पैदा होगी वहां पहुंच जाएगा तो कोई धनजानी नहीं था खाली संकल्प वाला आदमी था लिखावत तो नहीं था हाँ संकल्प में और लायक नहीं खाते रहते थे हम थे खाना थे बीजी से बनकर कल जो है पहुंचा ब्रह्म में गई है तो पहुंचा काठू नहीं संकल्प काटो तो एट बदू है कोई संकल्प दिल होते तब फ्री है आज मैं किसी रीते तेने लीजिए मैं तेरे तेज मैं कदा मैं कुछ हो जाए ठीक है दादा जी बात वाला कहता है जब बेजार हो जाता था बोले करो तो ऐसा करता कि चल मकान में बात कर दे ठीक है दादा जी संकल्प बड़ होता है तो मन अनुकूल होने लगता है परिस्थिति अनुकूल हो जाती है तो क्या मैं कहीं जाऊंगा यहीं बैठ के मैं तो खाऊ तो क्या है बता कर वाले जाने पर जो संकल्प करते हैं फिर उसके विपरीत विकल्प कर देते हैं किसी में शक्ति नहीं हो जाती है ये करूंगा फिर बोले अपने से नहीं होगा मेरे तो आज एक मलम में था कि स्वामी जी आप जो शांति कुछ में रहते हैं तो यहाँ 12 बजे बाहर निकलते हो और जब मोक्ष के चैन रहते हो तो आपका तो कोई इच्छा नहीं होता होगा फिर मोक्ष के चैन रहते हो फिर लोगों को दर्शन देते हो तो लोगों के संकल्प होंगे तो बाकी में अपने दर्शन था तो लोगों के संकल्प आप मोक्ष में होते हो तो लोगों के संकल्प होते हैं वहां होते तो लोगों के संकल्प नहीं होते ऐसा तो नहीं हिंदू तो क्या नहीं होते तो हम 12 बजे पौने 12 बजे ही आते हैं और मोक्ष में होते तो 3 बार दर्शन दे देते हैं दो बार दे देते हैं और आपके अंदर से तो कोई इच्छा नहीं होगी दर्शन दू और नहीं दू तो लोगों के संकल्प से आप 12 जाते हैं तो यहाँ की संकट से भी तो 12 आना चाहिए आपका तो दोनों में से नहीं आना चाहिए मैं तो थोड़ी समझने की कोशिश करो मलम जो है शुरू रहा हूँ शांति रुपये जो मलिन उस समय मैंने संकल्प किया कि हम चले हैं मेरे हाथ से संक्रांत दो चार रही बार हम तालाब के करीब ही निकले, कहीं भी आए हमने बाद में गया। तो लोगों के संकल्प लोगों के चित्त पर असर पड़ गया कि बापू शांति को क्या है कि अब नहीं निकलेंगे। जब मैं शांति को क्या होता हूँ तो लोगों का संकल्प जोर नहीं मार सकता है, और जब मोक्ष के पे हमें रहता था समझने की बातें जरा चित्र हमें बाद में होती है। जब मोक्ष बांधे बापू तुम बैठे बैठे भी किनारे आ जाते, और वहाँ जब होते तो उनके संकल्प बोलते हैं क्या शांति को कैसे बैठे हो क्या बात है क्या बात है लाल अच्छी बात की जो है तुरंत तो बुद्ध के इर्द गिर्द के शिक्षक है जिसने आनंद ने बहुत बढ़िया काम किया, वो तो फकीरों के हृदय से ऐसे सूक्ष्म उत्तर कौन निकल रहा है। तो जो इर्द गिर्द के लोग समझे होते हैं बुजुर्ग होते हैं तो बहुत बहुत ज्ञानियों के हृदय से खजाना मिलता है, ये बाद में शास्त्र बन जाता है और हजारों हजारों का मार्गदर्शन कर सकता है। अभी इस बात को हम लोग ज्ञान नहीं होंगे जल्दी नहीं होंगे, लेकिन यदि आनंद होता है या बुद्ध के शिष्य होते हैं बुद्ध का वातावरण होता तो ये इस बात को बड़ा इम्पोर्टेंट मिलता है। ऐसे सूक्ष्म चिंतन करते जो प्रश्न करते हैं वो आनंद में बड़े पदांग प्रश्न करते बड़े सूक्ष्म प्रश्न करके बुद्ध से बहुत कुछ निकलवाया, ये बहुत सार्थक है। ये बात है ना संकल्पों की दुनिया की क्यों अगर में जोर बैठे मोक्ष में होता हूँ तो क्यों निकलना होता है और वहां होता हूँ तो क्यों तुम्हारा जोर नहीं होता। अभी देखो तुम लोग अभी नहीं उठता होगे क्यों कि तुमको पता के प्रसाद बटेगा फिर भी छुट्टी होगी तो तुम्हारा संकल्प जोर नहीं पकड़ेगा। अभी चल रहा है अभी बंद होने जैसा नहीं, लेकिन जब तुम्हारे को एकदम स्थिति लगे एकदम प्यास लगे एकदम कोई बात याद आए दस बीस आदमी की चाहे गई तो चालू कथा में एकदम प्रसाद बांटे हो जाता है ने? और जो प्रसाद बांटने के एंड गेट होता है उदाहरण दे तुम्हारे संकल्प अधिक होते यही ख्याल है कि हाँ जी मुझे आए तो फिर बंद होते भी चालू हो जाता है। और कभी ऐसे लोग आते थे अरे ग्रुप जी ऐसे बांस के ठाकिया ऐसा होता है जो केवल विनोद नहीं समझ लो ना सारा जगत संकल्पों का ही परिणाम है। पहले भीतर संकल्प होते हैं एक के दो के दस के बीस के फिर घटिया घटना घटती। अभी जो तुम्हारा शरीर अभी जो तुम खाते पीते हो अभी जो हंसते रहते ये भी तुम्हारे संकल्पों का परिणाम है। तो जब सारा जगत संकल्पों का ही प्रतिबिंब है तो अपने को ब्रह्म मानने का संकल्प क्यों नहीं करते, अपने को मुक्त अनुभव करने का मुक्त का जो विचार करते हो मुक्त और बंधन में हो बंधन जात बात लिखा नहीं लेकिन हमें करवा पटेल हमारा का करवा पटेल के हमें हमारा तो बापू यही भला पटेल मोड़े के घर हो गए हमारा मके आए मान लिया है कि पटेल ने जीवे जहर मान लिया बाप। अरे जहर किसी के भी जीवा तो हो सकता है अमृत किसी के जीवा तो हो सकता है, हम पटेल ही नहीं है तो जहर क्या आएगा, हम देहधारी नहीं है। जब आत्मविचार करोगे तो जहर भी अमृत हो जाएगा और अनात्मा का विचार करोगे तो अमृत भी जहर हो जाता है। सारा विचारों का ख्याल है बस ख्यालों का खेल है। यदि उपदेश उपदेश देते तो उपदेश देते लेक्चरबाजी करते और लोगों के ख्याल घुमा के और अनुकूल संकल्प करा देते तो प्राइम मिनिस्टर बन जाते नहीं तो पतला दुबला एक महिला और पूरा देश को मेरे भी संकल्प है उनका बड़ा संकल्प है और दूसरों के संकल्पों को अपने संकल्प में ले आते सर्वे प्राइम मिनिस्टर कोई बंदूक लेकर सर्वे प्राइम मिनिस्टर होते संकल्पों को अपने तर्पण में जाते प्राइम मिनिस्टर धीरे से भाषण भाषण करता दृढ़ संकल्प में चढ़ाता है लोग तो ये रिश्ता चौकड़ा था तो क्या प्राइम मिनिस्टर वही होना थी कि जबरे संकल्प आए हो उन्होंने ठंडी का नहीं शांति का नहीं था सारा संकल्पों का खेल है। हमारा तो कोई शत्रु है ही नहीं हम तो सबका मंगल चाहते हैं लेकिन ये संकल्पों की बात बता रहे हैं। श्री राम सारा जगत संकल्पों का परिणाम इसलिए संकल्प करो तो फिर उसके विपरीत नहीं करो कि आप कितनी माँ भूल परिस्थिति नहीं विकट आवश्यक नहीं हवा कि नहीं हवा तो ठीक है हवा से तो अंदर में जो रणकार हो पहले व्यक्ति बन रहे आजू बाजू अलावा वालू ना हो तो चारों बाजू जो अंधारी देखा देते ओटी तो विस्फोट होकर प्रकाश देखा हम चारे बाजू जो अनुकूल आप तो मनी हो चटा का मान लो तो हम जो दे डरा दिन खेला दे व्यक्ति हार जाते जैसा जो रणकार होता ना एकदम मेरे गंगाराम सिंह की पत्नी को देखा मैं क्या इसको जो छोकरी आएगी हाँ हाँ तो छोकरी आएंगे तो उसको पहले हम कहते जो छोरी ना आए तो एक लाख रुपये ना मालूम लेकिन हाँ मैं कहती हूँ छोरी जाए पहले जो रणकार है उनमें हमें फलानू है जो फलानू है शुभ रहते हैं स्वाभाविक रणकार को पी आम तम मुझे आम तम तो नहीं तो मैं फिर मेरा मुंह सुधर आता था बेहद तो क्या समझता लड़की भी होगी अभी हमें लाइन आई बिता लें समझ गए बात ऐसा संकल्प तो विकल्प मत करो मैं एक संकल्प गलत तो संकल्प नहीं उठे तो उनकी देखा है ज्ञान की कभी कभी उठ जाए तो ठीक साधक को तो उचित संकल्प उठावे और उसके पीछे क्रिया जो करता है उसमें पूरा संकल्प जोड़ दे टिटोरियन दृष्टान्त आवे थे करोड़ियों में दृष्टान्त आवे थे संकल्प सही परिणाम संकल्प बल यदि दृढ़ है तो जो हाथ से टिंगला है पैरों से टिंगला है एक चरणामृत लेने की ताकत नहीं लेकिन संकल्प दृढ़ करे तो उस मेरू पर्वत को भी हिला सकता है ऐसे संकल्प को बल उतना बल जोड़ना पड़ेगा तो रंजीत सिंह छोटा था बाप उसको ले गया साथ में जवेरी जी कुछ धीरे धीरे दिखाए देते जवेरी ने दिखाए जवेरी ने कहा तो बहरों के लिए लिया इस राजकुमार के लिए बोले ठीक राजकुमार जवेरी तुम्हारा हीरा करेगा तो बोले क्या इसको क्या कोहनूर कराओगे छोटा सा राजा उनका कोहनूर कराओगे इसको तो रंजीत सिंह ने कहा कि हाँ कोहनूर लगे कोहनूर पहनने के लायक है तो मैं कोहनूर पहन के रहूंगा तुम क्या समझता जवेरी और वो बड़ा हुआ हिम्मत के युद्ध किया और कोहनूर लाया पहरा चीन का एक छोटा सा लड़का अनाथ जैसा गरीब दरिद्र एग्जाम के दिनों में मलमल के कपड़े में आगे रख कर किताब पढ़ता था किसी ने कहा कितना किताब पढ़ता तो कोई चीन का वजीर होगा बोले ईश्वर का नया यदि है तो मैं वजीर होते हुए दिखाऊंगा वजीर हो गया अमेरिका के बगीचे में भागा हुआ लड़का बैठा था बिल्ली पकड़ी और तूफानी लड़का स्कूल में से भाग कर आया था और बिल्ली पकड़ी और उससे खेल कूद कर रहा तो इधर टावर की घंटिया मेरी टन 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 ये लड़का बोलता है कि ये टावर क्या कह रहा है घंटी बिल्ली क्या कह रहा है वॉशिंगटन लॉ मेयर ऑफ लंदन मैं लंदन में का मेयर बनूंगा तो मेयर घूमने को निकला था बगीचे में बोले क्या बोलता है तूफानी सोच रहा बोले ये घंटी बोल रहे थे लॉ मेयर ऑफ लंदन बोले पढ़ा है नहीं पढ़ा तो नहीं स्कूल में से भाग के आया हूँ बोले पढ़ेगा पढ़ूंगा मास्टर न मारेगा तो पढ़ूंगा नहीं तो भाग जाऊंगा लड़के को दाखिल कर दिया पढ़ा लिखा अपना बच्चा नहीं था वो मेयर उसको बना लिया ये संकल्पों का चमत्कार है गॉड हेल्प दो ही हेल्प देमसेल्फ हिम्मत बंदे मददे खुदा दो हिम्मत बंदे बेजार खुदा थोड़ा बड़ा क्या नहीं काम नहीं चलेगा ये कौन सा उकदा जो हो नहीं सकता तेरा जी ने चाहे तो हो नहीं सकता छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे इंसान क्या दिले दिल भर में घर में करे खर्च नहीं है संकल्प काटता है अपना श्री राम थोड़ी खिलू होते अर्थात
गरीब कुटुंब नो निर्धन हेनरी कैजर
तुम मानस समय के तुम्हारे तो तुम्हारे जाएगा तुम हम कैसो क्या
मन में उभराता विचार नो प्रचंड पुरुषार्थी अमल करवाने शुरुआत करी अने धीरे धीरे औद्योगिक क्षेत्र में तो आगळ आवा लाग्या तो 85 वर्षनी उमरे ईस्वी सन 1961 मृत्यु पामा त्यारे तेमनु औद्योगिक साम्राज्य
50 દેશો માં ફેલાયેલું હતું.
તેરે વર્ષના છોકરો જેને નોકરી નથી મળતી, વેપારી બેસેલી દીધો ને સંકલ્પ કર્યો કે હું મોટો ઉદ્યોગપતિ થઈને જ જતીશ. 1961 સુધી એવા ઉદ્યોગો અને 50 દેશોમાં એના ઉદ્યોગો ચાલ્યા. કોણ એનું નામ?
હેનરી કૈઝર.
હેનરી
કૈઝર.
હેનરી કૈઝર. કૈઝર કે કૈઝર?
કૈઝર.
ચાલો.
9000 માણસો કામ કરતા હતા.
9000 માણસો એની પાસે કામ કરતા. બોલો. જેને નોકરી નહોતી મળતી એની પાસે 9000 માણસો કામ કરતા હતા. તો બધું ગમ કાકતા તો બહુ સહેલું. 9000 ને 7000 આકરા. અને 9000 માણસો કામ કરે અને 50 દેશોમાં ઉદ્યોગ થયા, મરી ગયા પછી જે માણસોને ઉદ્યોગ ચિંતન થયું છે તો વળી થયો કઈ નહીં. હા, જો બ્રહ્મજ્ઞાન કા સંકલ્પ ક્યાં હોતા તો મહારાજ બેડા પાર હો જાય હતા. ઉદ્યોગ લોકો ઉદ્યોગ વિદ્યા કે સંકલ્પ કરના એ તો મૂર્ખો કા કામ હૈ. વિદ્યાર્થી તો પરમાત્મા કે પાને કા સંકલ્પ કરતે. મૂર્ખ લોક ઉદ્યોગ કા સંકલ્પ કરો જીતકો જગત ફરતા લગે. હાજી.
મહાકવિ કાલિદાસ ની વિદ્યા પ્રાપ્તિ માં પણ દ્રઢ સંકલ્પ જ રહેલો છે.
અરે કાલિદાસ તો મહામૂર્ખ છે. કાલિદાસ થી તો કથા સુનાવી છે. એક રાજકુમાર થી આપણે પહેલા સુના દીધો. ચલો
કાલિદાસ માટે કહેવાય છે કે તેઓ નાનપણમાં મહામૂર્ખ હતા. જહાજની જે ડાળી પર બેઠા હતા તે જ ડાળીને કાપતા હતા. રાજાના પ્રધાનની એમના પર નજર ગઈ અને પ્રધાને એમને નીચે ઉતારી સુંદર પોશાક પહેરાવી મૌન ધારણ કરવાનો આદેશ આપી અને એક પંડિત શિષ્ય હોવાનો દેખાવ કરી રાજ દરબારમાં નિમંત્રણ આપી રાજાની કુંવરી સાથે લગ્ન કરાવ્યું. રાજાની આ કુંવરીએ પ્રધાનના બુદ્ધિશાળી પુત્રને લગ્ન માટે નાપસંદ કરેલો. એનું વેદ લેવા માટે પ્રધાને આવું કાવતરું કરેલું. લગ્ન પછી કુંવરીને ખબર પડી કે છોકરો તો મહામૂર્ખ છે એટલે કુંવરી મૈણા મારવા લાગી. પત્નીના અપમાન સહન ન થવાથી તે યુવાન ઘર છોડીને ચાલી નીકળ્યો. કાલી માતાના મંદિરમાં બેસી ગયો. તેણે દ્રઢ સંકલ્પ કર્યો કે શરીર પડે તે પડવા દેવું પણ જ્ઞાન તો મેળવવું જ. ખાધા પીધા વિના તેણે આકરું તપ અને અભ્યાસ કર્યો. તે કાલી માતા પ્રસન્ન થયા અને વરદાન માગવા કહ્યું. યુવાને વરદાન માગ્યું. હે દેવી, મારી જીભે સદાય સરસ્વતી વસો, મારી વાણી રસિક બનો. હું લખું તે નાટકો થાય અને બોલું તે કાવ્યો થાય. એ પણ એવા કે જેની જોડ જગતમાં ન મળે. તેમના હૃદયમાં કાવ્યના ઝરણા ફૂટવા લાગ્યા એટલે તે કવિઓમાં શ્રેષ્ઠ બન્યા. મહાકવિ કાલિદાસ કહેવાયા. તે દ્રઢ સંકલ્પથી મહામૂર્ખમાંથી મહાપંડિત બન્યા.
તમારે શું બનવું છે કહેજો. પ્રસાદ માટે નહીં કહેતા તો પ્રસાદ નહીં. અમને રિસેસ કે પહેલે ઓર રિસેસ કે બાદ. રિસેસ તો પહેલે થાય કે જીતના જગત દૃશ્ય કા બોજ અધિક હૈ ઉતના ઉસ કલ્પનાઓ કો હટાને કે લિયે પ્રસાદ કી ઓર જરૂરત. બાદ મેં સુના કે જીતના સંકલ્પ મેં ડરતા હોતી ઉતની સફળતા હોતી. જય જય ઓમ ઓમ ઓમ.
આકાશ તીન પ્રકાર કે હોતે હૈ. जिसमें सारा जगत पंच भौतिक पदार्थ घूमते नजर आते हैं स्वप्न तुल्य संसार उसे भूताकाश कहते हैं. भूताकाश चित्ताकाश के सहारे से है. बड़ा फिलोसफी है. बहुत ऊपर ज्ञान चल रहा है. इस ज्ञान को यदि सुनने और समझ लिया तो दूसरा सब छोटा लगेगा. इस सत्संग को हजम कर लेगा तो दूसरे सत्संग सब बच्चे जैसे लगेंगे. ये तो फॉलोअप करने वाला बाल मंदिर में जाता है तो प्रभावित नहीं होता. ऐसे इस वेदांत ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान को अपने ज्ञान को जो आदमी थोड़ा सा समझ लेता है तो वो कहीं भी उसका दिल चिपकता नहीं. वशिष्ठ कहते हैं कि श्री राम जी जिस एक मेरे महाकामा ने की योग वशिष्ठ को पढ़ लिया ग्रंथ को पढ़ लिया है. जिसको उसमें रुचि नहीं है उसको चाहे कि तप करें व्रत करें जप करें कठिन परिश्रम करे ताकि उसका हृदय शुद्ध हो तब उस मेरे शास्त्र को समझ पाएगा और उसको समझने के बाद उसको कुछ समझना शेष नहीं रहता है. योग वशिष्ठ का प्रसंग तुमको सुनाता हूँ. हे राम जी, ऐसा अपूर्व ग्रंथ न पहले बना है न बाद में बनेगा। आज तो कई वर्ष पहले आकाशवाणी की, अभी तक वशिष्ठ जी का योग वशिष्ठ की बराबरी का कोई ग्रंथ नहीं बना है। रामा अवतार ने कहा कि इस ग्रंथ के बराबरी का और ग्रंथ न बना है न बनेगा। इसमें इतिहास है, प्राण है, इस लोक की बात, उस लोक की बात, ये सब बताते हुए थे। जिसको इस लोक और इस लोक की सिद्धि होती है, परम सिद्ध स्वरूप परमात्मा से तरफ उठाया। और राम जी बना कुछ नहीं, उस चेतन की सत्ता से सब भागता है। चेतन का चिन्ह समेत लोग सब सफा हो जाता है। कितना साफ ज्ञान है। लीले तीन आकाश होते हैं, एक मृत आकाश, दूसरा चित्त आकाश, तीसरा चिद आकाश। मृत आकाश चित्त आकाश के सहारे है। मैंने घड़ा बनाया, घरों में भूत आकाश है। मैंने मकान बनाया, मकान में भूत आकाश है। लेकिन भूत आकाश मकान में बनाने की जो योग्यता है वो चित्त से तो फिरी। चित्त निकल जाएगा तो मुर्दा करिया क्या बनाएगा, मुर्दा से क्या बनवाएगा। तो चित्त आकाश में भूत आकाश बनाया, चित्त आकाश में भूत आकाश का उपयोग किया, चित्त आकाश से भूत आकाश की गति जो है। तो चित्त आकाश के आश्रित भूत आकाश है और चिदाकाश के आश्रित चित्त आकाश है। ये समझ लेना, तुम्हारे घर की खबरें हैं, जरा कठिन लगेगा, थोड़ी उदासी छा जाएगी हो सकता है, लेकिन तुम इतने अनाधिकारी नहीं है कि रुक जाओ। बहुत तपस्या करके यहां पहुंचते हो, इसलिए वेदांत ज्ञान में सुनोगे तो सुनने को मिलेगा भी। कहा भूताकाश से सूक्ष्म चित्त आकाश है। कहते आकाशवाणी हुई, कभी तो बाहर से आवाज आया वो भूताकाशवाणी। चित्त तो ज्यादा भूतर से जब आकाशवाणी होती है उस पर फेंक चलती। भूताकाश से सूक्ष्म चित्त आकाश है। ये भूताकाश भी बहुत सूक्ष्म है, तुम्हारे मुट्ठी में नहीं आएगा, तुम्हारे घर में आया है। घड़ा उठाओ, आपका बंद बाड़ी का कार है या ट्रक बस है, बस में पूरा बस आकाश भरा है, लेकिन बस भागेगी तो इस एरिया का आकाश लेकर नहीं भागेगी, उस एरिया का आकाश नहीं निकल जाएगा, वो नया आकाश कोरोना पसार हो जाएगा। कितनी भी पक्की तुम्हारी इमारत हो या पक्का कोई चीज हो, उसमें से भी वो भूताकाश प्रकाश हो जाता है, इतना वो सूक्ष्म है। भूताकाश से सूक्ष्म चित्त आकाश होता है, इसलिए दिन वेदियों की गति चित्त आकाश में होती है। बात बुरा समझ लेना ध्यान से, तो चमत्कार और सूक्ष्म शरीर और लोकलोकांतर आपको समझ में आ जाएगा। भूताकाश से अधिक सूक्ष्म चित्त आकाश होता है। जैसे इस दीवार में, इस लकड़ी में भूताकाश हो पाएगा है, यदि अवकाश में होता तो हथौड़ी लगाने पर भी खिली अंदर जाती नहीं। तो लकड़ी में आकाश है, सूक्ष्म है इसलिए है। दीवार में भी आकाश है, लोहे में भी आकाश है। लोहे का एक ढीला से पूरा बंद, बस पत्थर जैसा टुकड़ा है लोहे का, उसमें भी आकाश है। यदि उसमें आकाश न होता तो लोहार की बत्ती में डालने से उसमें अग्नि अंदर दिखता कैसे, पूरा अग्निमय हो जाता है, तो अवकाश उसमें भी है। तो भूताकाश से भी ज्यादा, जैसे लोहे में अग्नि प्रविष्ट हो जाता है, अग्नि को प्रविष्ट होने में कोई बाधा नहीं पड़ती है, किंतु अवकाश है, आकाश है लोहे। ऐसे ही भूताकाश के अनंत गुना अधिक सूक्ष्म चित्त आकाश है, इसलिए योगी को मकान और पर्वत बाधा नहीं देते, वो पर्वत में सभी प्रकार हो जाते बंद मकान में, उनके जाने में कोई हरकत नहीं होती। हरिद्वार में घाट वाला बाबा के पास टेलीफोन एक्सचेंज में नौकरी करने वाला एक साधक ने कहा कि किसी बाबा को मैंने कहा तो मेरे को बहुत घटना उसने सुनाई, उन्हें ध्यान में से उठना चाहता हूँ सुबह, लेकिन बाबा में आंख नहीं खुलते, नौकरी से आता हूँ 11-12 बजे, सुबह 5 बजे उठ नहीं पाता हूँ, अलार्म रखता हूँ, लेकिन फिर अलार्म घंटे बजाता हूँ।